نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دار قرآن 2024. آج اس میں ہم جز 7 و اذا سمیو یہ جز دیکھیں گے، اور اس پارے کے اندر جو چیز ہمیں پچھلے پارے کے خلاصے کے طور پہ سمجھ آتی ہے، تھوڑا سا اس کو پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. پارہ نمبر 6 کا پہلا ہی جملہ تھا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ برائی کا چرچا نہ کرو، برائی کے اشتہار نہ بنے پھرو. اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم اذان دیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں کھڑا کر دیا تھا حق بات کے لیے، وہ تو بس ایسے ہی تھا کہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا. اور واقعی حقیقت ہے کہ اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. آج کا پارہ آپ اپنی خاندان، اپنی فیملی، برادری کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا، اگر آپ پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. تو آج کے بارے کے اندر ایمان والوں کو کچھ ایسے بنیادی احکامات سکھائے جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتوں میں ابھی نہ پڑھو، ابھی تو ان کو اللہ کا ہی نہیں پتہ. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اس میں ہم نے قرآن پاک کی کچھ خصوصیات دیکھی تھی، تو ادھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قرآن کے نزول کے وقت مکہ والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ، یعنی اگر میں آپ سے کہوں نا کہ پورا پارا بحثوں سے بھرا پڑا ہے، نہ ماننے کے 100 بہانے، ہر وقت بس یہ کیوں تو وہ کیوں. جیسے بچے کو بھوک نہیں ہوتی تو وہ ماں کی ہر بات پہ اعتراض کرے گا، اور تھوڑی دیر بعد ماں سمجھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس کو بھوک نہیں ہے. تو یاد رکھیے، آج کا پارہ اور 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل بالکل آپ کو ملتا جلتا لگے گا، اس کا شروع کا حاف، کہ مکہ والے وہ خاندانی روایات کے مقلد ہو چکے تھے. جو سب کرتے ہیں تم کرو، اور ایسا دین بہت آسان لگتا ہے، رواجی دین ہوتا ہے، رسمی دین ہوتا ہے، خاندانی دین ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، چپ کرو، سب کو پتہ ہے، ایسی بات نہ کرو، ویسی نہ کرو. نہیں نہیں ہم کیوں برے بنے؟ اچھا بھائی یہ اچھے طریقے نہیں، یہ رسومات غیر اسلامی، ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ، لیکن چپ کر جاؤ. خام خواہ بچے نہیں بولتے، عورتیں بالکل نہیں بولتی. یعنی اسی ٹون میں جس میں آج آپ اور میں ہیں، آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں آج میں اور آپ ہیں نا، تو ہم بھی اپنے خاندانوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. ہمیں غیروں سے کیا لینا دینا، ہم کس سے ڈرتے ہیں، ہمیں کن کی باتوں کی فکر ہے، یا پھر کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنوں کو. اور سب سے مشکل جہاد اگر اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جابر سلطان کے سامنے ہے، تو یہ بات کی بات ہے. سب سے مشکل جہاد شروع میں اپنے خاندان کے سامنے، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بات کرنے پہ آتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ اور میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، تو سورت مائدہ کے اندر معاہدے پورے کرنے کی پکار تھی، اوفو بالعقود. اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ جب عہد الست والا وعدہ، یعنی توحید کا وعدہ کوئی ایک انسان پورا کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر حالات کون سے گزرتے ہیں. اور اس بارے میں آپ کو پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنو کی اتنی پیاری محبت بھری پکارے ملیں گی، کہ پچھلے پارے میں کتنی دفعہ تھا یاد کیجئے، 9 تھا، اس سے پیچھے میں کتنی دفعہ تھا، 8، اور آج 7 ہے. یہ بات لکھ لیجیے، آج کا جم بنا دیں، 3 پاروں میں 7، 8 اور 9 ٹائم. اور میں ایک جملہ بول دوں، تمہیں بار بار کہا ہے تم نہیں سنتی. یہ جملہ کبھی آپ کی ماں نے بولا تھا بچپن میں؟ بیگم کو بھی میاں صاحب کہہ سکتے ہیں، بیگم آپ نہیں بدلیں گی پھر میں ہی بدل جاتا ہوں. دیکھیں یہ تو ہمارے انسانی جذبات میں ڈوبی ہوئی باتیں، اور یہ میں آپ کو اچھی طرح بھی سے بتا دوں، جذبات کو آپ الفاظ کا روپ نہیں دے سکتے. یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ فیل بھی کیا کریں کہ پڑھنے والے اپنی ٹون سے بھی آپ کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جذبات کو آپ الفاظ کے جب پیکر میں ڈھالتے ہیں نا، تو ان کا اثر ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ جذبات رو کے ہی پتہ چلتے ہیں. ایک آنسو کبھی بہا کر دیکھیے، اس کی زیادہ تاثیر ہوگی بچوں کے سامنے یا میاں یا بیوی کے سامنے، اس کی نسبت جو کہ آپ گھنٹوں کی تقریر. تو میں آج آپ کو پہلے ہی کہہ دوں، بحثیں چھوڑ دیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ خوبصورت دین جو آپ کی زندگی میں داخل ہوا ہے، یہ آپ کے گھروں کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد والوں کے ساتھ بھی رہیں، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ بحثوں سے کبھی بات نہیں ہوتی. منہ کھلا ہی نہیں تو اندر جائے کیا؟ آپ تو فطرت کے اصول کو بھی سمجھ لیجئے اسی چیز کے اندر. بالکل اسی طرح سے जितना ज्यादा आप अपने आप को अपने इस चीज के साथ समझेंगे, आपकी जिंदगी में ये रंग आपको समझ आएगा। अब हुआ क्या कि जब आपने या अय्युहल्लज़ीन आमनू की पुकार सुनी, जल्दी से मैं नंबर्स आयतों के बोल देती हूँ ताकि आप उनको महसूस कर सकें कि ये कैसे हैं। मायदा ही है पूरी सूरत। और आप यहाँ ये भी लिख लीजिए कि पूरे कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिस सूरत में या अय्युहल्लज़ीन आमनू है वो सूरत मायदा। अभी जमा कर लें, जमा तफरीक तो सबको ही आती है। पिछले पारे में 9 और वो पूरे के पूरे सूरत मायदा के ही थे। और 9 के साथ 7 आज मिला लीजिए, एक और तरीका आपको वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के जरिए इल्म लेने वाला मिल गया। 16 टाइम्स आपको अल्लाह ताला का कलाम पुकारता है। 87, 90, 94, 95, 101, 105, 106, ये हैं आयतों के नंबर। चलिए आज अब अपने खूबसूरत पारे के थीम पे आते हैं, मारफत इलाही से एतराफ हक तक। ये क्या है, आज आप और मैं इसका मजा चखेंगे। देखा है जो मैंने औरों को दिखला दे, ये एक शेर है किसी का। हकीकत ये कि मारफत इलाही एक ऐसा आईना है कि जिसमें झांकने के बाद आपकी दुनिया ही बदल जाती है। दुख सुख लगने लगता है, सुख दुख लगने लगता है। जिसको लोग शर 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 कह रहे होते हैं वो आपको खैर लग रहा होता है। और आप कहते हैं कि अल्लाह ताला आपने ये जो कुछ भी मामला मेरे साथ किया है ये जरा दूसरों को भी तो दिखा दे। वो ये कैफिया, या लैता कौमी या लमुन बिमा गफर ली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन। हबीब नाम का एक शख्स, हम मिलेंगे उस वाक़े को पढ़ते हुए उस किरदार से सूरत यासीन के दौरान कि या लैता कौमी या लमुन बिमा गफर ली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन। और उसका वो पहला जुमला जो 23वें पारे की पहली सीढ़ी है ना, वमाली अलाबुदुल्लज़ी फ़तरनी वइलैही तुरजऊन, ये साहबे मारफत का जुमला होता है। जिसको अल्लाह की तौहीद समझ आ जाती है ना, वो चुपके चुपके मुस्कुरा रहा होता है जब लोग घबरा रहे होते हैं, जब लोग परेशान हो रहे होते हैं। उसको वो पीछे वो जो काफिर के साथ या गैर मुस्लिम के साथ क़यामत के दिन मामला होना है ना, मारफत इलाही पाने वाले के साथ वो मामला इस दुनिया में होने लगता है। लोगों के गैब के पर्दे छटने के बाद उनको रब नजर आएगा, रब की पसंद नापसंद दिखेगी उसको इस दुनिया में, उसका एक अच्छा सा तजुर्बा होता है। तो आज हम इस बारे में, पूरे बारे में ही आप देखिएगा, मक्का वालों को मार्फत हक नहीं थी इसलिए हुज्जतें करते थे, बहसें करते थे। और मार्फत के आला तरीन मुकाम पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर मैं अपने फ्लो में आपको बताऊं ना इस तरतीब में मार्फत हक, तो उस पहले रुकू और शुरू की आयतों में आपको निजाशी और हबशा के जो लोग थे उनकी मार्फत हक दिखेगी। अभी आयतें पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो कसम खाने की बातों में आपको दिखेगा कि जुबान का एक बोल तुम्हें इतने बड़े बड़े कफारे अदा करने पे मजबूर कर रहा है। तो उस रब की नाफरमानी से बच जाओ जिसको रब कहते हैं। फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि शराब की बातें दोबारा, जुए की बातें, अहराम की पाबंदियों का तस्कर आएगा। ये सारी पाबंदियां वही बंदा अपने ऊपर बर्दाश्त करता है जिसको रब की मार्फत है। और इसी बारे में आप सुनेंगे, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, 3 दफ़ा कुरान में, आज पहली दफ़ा आ रहा है आपके मेरे लिए कि लोगों तुमने तो अपने रब की वो कदर ही नहीं की जो कि तुम्हें करनी थी। और इसी तरह से उल्टे सीधे सवाल जवाब करने से बच जाओ। माँ बाप और बाप दादा के नाम लेकर अपने आप को गुमराहियों पर डालने वालों, और ये कहना कि हसबुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमें तो वही काफ़ी है जी जिस पे हमारे अम्मा अब्बा थे, जो हमारी सास करती थी हम तो वही कहेंगे, तो तुम्हें नहीं अभी अल्लाह की मार्फत हुई। मार्फत क्या है? अरफा से, आरफ, आरफा, आरिफ, तारुफ, बस ये सारे उर्दू के बोल। तारुफ हो जाए जिसको अल्लाह से, जो अल्लाह को पहचान जाता है, जिसके दिल दिमाग इरादों पे हर चीज़ पे अल्लाह ताला की हस्ती इस तरह छा जाती है, वो इस दुनिया में सिर्फ फन के नाम पे उसको नाराज़ नहीं कर सकता। वो दूसरों को खुश कर रहा होता है, ऊपर से उसको दिख रहा होता है अल्लाह को मेरे पे गुस्सा आ रहा है। देखिए कभी कभी बच्चा मेहमानों के सामने माँ के साथ बदतमीजी करे ना, तो उसको पता होता है कि अम्मी ने कुछ कहना नहीं है, नहीं करो बेटा, बेटा नहीं करते, रुक जाइए ना, कर दीजिए ना, क्योंकि उसको पता है कि अभी बीच में एक बैरियर है, मेहमानों के जाने की देर है, फिर अम्मा ने अपनी असल शक्ल में आ जाना है। अब वो बच्चा जो मस्ती करता है बार बार देख भी रहा होता है ना घूम घूम के, और अक्सर देखे घरों में मेहमान आए तो बच्चे मस्ती शुरू हो जाते हैं। ये हमारी आज इस दुनिया की कैफियत है। ईमान जब आता है ना, तो आप कह रहे हो तो अल्लाह ताला मैं तो मजा कर रही हूँ, लेकिन ये आपको मेरे पे गुस्सा कितना आ रहा होगा इस वक्त। अल्लाह ताला मेरी मदद कीजिए ना, अभी मैंने मजा करना है, अभी नहीं मुझे हिदायत चाहिए। यानी वो खुद कलामियाँ हैं, कभी कुछ हैं, कभी लाड हैं अल्लाह से, कभी प्यार हैं। और जिस तरीके से ये मार्फत होती जाती है, और क़यामत के दिन जो अल्लाह के नबी जो हैं वो खड़े होंगे मैदान हशर का मंजर पढ़ने वाले आयत 109 मायदा में, कि जिस खौफ से अंबिया कराम दुनिया में कांपा करते थे कि अल्लाह जिस दिन सवाल जवाब होगा तो क्या बनेगा, और ख़ास तौर पे फिर हज़रत ईसा अलैहि सलाम जब उनको और उनकी माँ को अल्लाह कटहरे में खड़ा करेगा या उनको खड़ा करके पूछेगा, ए ईसा तू इब्ने मरियम था, आ अंत कुलता लिन्नासी, क्या तू लोगों को ये कह के गया था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बनाना या खुदा का बेटा बनाना? उस वक़्त फिर मारफत इलाही के खौफ से हज़रत ईसा अलैहि सलाम कांप जाएंगे, काला सुबहाना का पा के अल्लाह तू माँ ये कौन ली, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल अनकूला माँ ले सली, मैं वो बात कह दूँ जो मेरे काबिल नहीं, यानी छोटा मुंह बड़ी बात है, जिनके दिलों पे अल्लाह ताला की कह लीजिए कि ज़ात की परछाइयाँ पड़ती हैं ना मार्फत के तौर पे, उनकी ज़ुबान गुंद हो जाती है। फिर आप देखिए कि इस बारे में आज वो सूरत शुरू होने वाली है जिस सूरत के साथ 70,000 फरिश्ते उतरे, पूरी एक गो में पूरी सूरत उतरी, पूरी सूरत अल्लाह की तौहीद के दलाइल और बयानात। दो तरह की अल्लाह ताला की आयतें हैं, आयाते मशहूद और आयाते मुस्तमिल, दोनों आएंगे, नाम घबराइए नहीं, मैं सिर्फ आपको झलकियां दे रही हूँ कि आप आज इस बारे में सुनने के वाले हैं। और जब आप ये सुनते सुनते आगे जाते हैं ना, तो आपको इब्राहिम एक यंग बच्चा जो एक मुशरिक माहौल में पैदा किया गया, बुत फरोश बाप का बेटा, और वो जो है वो अपनी मार्फत के सफर को तय करता है, कुफर पे नहीं थे, इस्लाम पे थे, कुल्लू मौलूद यूलद अलल फितरा, और ख़ास तौर पे फिर नबियों के बारे में जो अल्लाह की सुन्नत है कि कोई भी नबी नबुवत से पहले भी कुफर पे नहीं होता, शिर्क पे नहीं होता, हराम नहीं खाता, अल्लाह के नबी के लिए भी ये मिसालें आपने सुनी है। तो वो वहाँ खड़े रब की पहचान कर रहे हैं, वो निशानियाँ जो उनको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, अल्लाह ताला बार बार इब्राहिम के तस्करे कर कर के आपको मुझे क्या बताते हैं कि वह कज़ालिका नूरिया इब्राहीम मलकूत समावाती वलत, पूरी सूरत अल अनाम दो तरह की निशानी है। आज मैं आपको हिंट दूंगी शुरू में एक, और फिर आप हाईलाइट करेंगे ये कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो ये कौन सी, और ये सारी निशानी आपके मेरे इर्द गिर्द भरी पड़ी है, लेकिन हम उसके बारे में गौर नहीं करते। हाजर अभी, हाजर अभी, हम दुनिया के खुदाओं को पूछते हैं, इब्राहिम ने सारी निशानियां आसमान की देखी, समंदर नहीं देखा कि ये हाजर अभी, इब्राहिम को शिर्क वाले माहौल में भी पता था कि रब आसमान पे होगा, सूरज भी चांद भी सितारा भी, तीन चीजें देखी। तो ये जो मार्फत का सफर है ना, ये वही है जिसको फिर कह देती हूँ कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और फिर जब आप पारे के बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे, तो फिर आप इस बात को इंजॉय करेंगे कि जब ईमान पकता है तो फिर वही बात है कि ला तुद्रिकुहुल अबसार, उसको आंखें तो नहीं देख सकती लेकिन वयुद्रिकुल अबसार, वो आंखों को देख लेता है, यानी फिर वही बात है कि हज़रत जिब्राइल वाली जो रिवायत है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, कान का तराहू। तो आखिरी जुमलों पे बात करके ये बता दूं कि जब मार्फत इलाही होती है ना, तो एतराफ़ हक लाजमी है, और जब मार्फत इलाही होती है ना, तो नमाजें कान का तराहू के दर्जे पे होती हैं, एहसान के दर्जे पे बंदा इबादत करता है, वो बोझ नहीं उठाता दिमाग से कि फेंको, ये फिर मौलवी साहब बोल उठे, ये फिर नमाज का वक्त हो गया, और वो हज़ारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने न्यास में, कभी तो अल्लाह मजाज के पर्दे में आ तो सही, हालांकि ये शिर्क की बात बनती है, मजाज का पर्दा क्या होता है कि छुपा हुआ अल्लाह सामने किसी बुत की सूरत में ही आ जाए, यानी जैसे आज भी मुशरिक अकायद रखने वाले लोग यही कहते हैं ना कि इनके अंदर अल्लाह की रूह है, ये हमारे अवतार हैं, ये फलां हैं, ये हमारी बात आगे पहुंचाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब बंदे के अंदर ईमान का फल पकता है तो फिर उसकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और आखिरी बात, वह नुकल्लिबु अफ़ईदतहुम वअबसारहुम, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हक को झुटलाते झुटलाते लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं कि अल्लाह कहते हैं हम उनकी मत्ती मार देते हैं, उनकी आंखें उनके दिल फट जाते हैं, और उनको सब कुछ नजर आते हुए भी कुछ नजर नहीं आता। तो बहरहाल अल्लाह करे कि इस दौरे कुरान से कम अज़ कम हमें मार्फत तो हो जाए, फिर इंशाल्लाह इतराफ़ भी आएगा। कहते हैं ना मोहब्बत और इश्क और मुश्क छुपती नहीं है, ये लोगों के जुमले हैं, लेकिन मोहब्बत भी नहीं छुपती, ये आंखों से दिखती है, ये अमाल से दिखती है, और जब आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत महसूस होती है, तो आज आप इंशाल्लाह जो अपने पास ईमान की शाहें पढ़ने सुनने वाले हैं उसमें भी ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो अल्लाह करे कि हम उस दर्जे के तवक्कुल वाले बन जाएं कि जिसके बाद फिर हमारे दिल अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इस तरह से लग जाएं कि हम उसको बेहतरीन तरीके से देख सकें और सुन सकें। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब इस पारे को आप खोलते हैं, और मुझे है हुक्म ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल फटा जाता है, ये हो नहीं सकता कि आपको अल्लाह की मार्फत हो और आप हुक्मे अजान ना देते फिरे, आप दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की दुहाइयां ना देते फिरे, ये नामुमकिन हो जाता है। आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप अल्लाह ताला के साथ अपना मामला दुरुस्त रखें और फिर अल्लाह की बातें ना करें, फिर गली गली कूचा कूचा आप अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बनते हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर बंदा रोता है धोता है और वो कहता है कि अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना, ऐ अल्लाह ताला मेरे साथ मामला अच्छा करना। अब देखिए जिस बच्चे से प्यार होता है ना, घर में आने ले हर बड़े छोटे से आप उसी की बातें करते हैं, हत्ता कि जिन घरों में छोटे छोटे पोते निवासी होते हैं ना, तो अब देखिए मेहमान आके बैठते हैं ना तो दादियाँ दादे उनकी बातें शुरू हो जाते हैं, आज इसने ये किया। रात को मियाँ साहब घर में आए या बेटा आए तुम सास के, आज इसने ये किया, आज इसने ये लफ्ज़ बोला है, आज इसने ये तोड़ा है, आज इसने ये जोड़ा है, क्या है इसमें? मोहब्बत है। तो आज अल्लाह आपको मुझे अपनी मोहब्बत नसीब करे, तो फिर देखिएगा कि हम लोगों के साथ अल्लाह की बातें करते रहेंगे और फिर ईमान की ताकत। मैंने आपको पूरे पारे का गो थ्रू तो करा दिया है, इर्द गिर्द की बहसें और झगड़ों से बचकर ईमान की ताकत की बुनियाद पे आप उस तरीके से फिर आपको पाते हैं जैसे हबशा के साथियों ने पाया। आइए अगली आयतों के साथ आपको इनकी स्टोरी थोड़ी सी बताऊंगी। अब हम देखेंगे कि आज हमारे पास इस बारे में सूरत माईदा की आयत नंबर 83 से एंड तक 120 और उसके बाद फिर सूरत अल अनाम का आगाज़ है। शुरू करेंगे आयत के साथ, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा समीउ मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अय्युनहुम तफीदु मिनद दमी। अगले लफ्ज़ पे ज़रा सा कान रखिएगा, मिम्मा अरफू मिनल हक, ये है अरफू मिनल हक। चलिए रुकू नंबर 11, 83 से 86, टॉपिक है एतराफ़े हक। कैसे? व इज़ा समीओ, और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तब इनकी आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं। नोट करिएगा एक जुमला, आंसू नहीं बह रहे, आंखें बह रही हैं, जिसको वो कहते हैं ना कि रो रो के उनकी आंखें ही बह गईं। और हकीकत यह है कि जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है ना, तो उसके बाद एक इंसान अपनी आंखों पे काबू रख ही नहीं सकता। और ये जुमला हज़रत आयशा अपने बाप अबू बकर के लिए बोला करती थी कि काना अबा बकरिन रजुलुन बुक्का। अबू बकर बहुत रोने वाले इंसान थे, उनको अपनी आंखों पे काबू नहीं रहता था जब वो कुरान पढ़ते थे। आज मैं और आप भी ज़रा अपने बारे में पूछें कि हम इस कुरान को पढ़ते हुए कितना रोते हैं, और जब पहचान गए रो लिया तो क्या कहा? वो कहते हैं ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले। किन लोगों के साथ? जो तस्दीक करते हैं, यानी हमें उन लोगों के साथ लिख ले कि जिन्होंने तस्दीक की। और हमारे पास कौन सा उजर है? ज़रा सा इस जुमले पे भी तवज्जो फरमाइएगा, और हमारे पास कौन सा उजर है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हम पर पहुंचा है इस पर ईमान ना लाएं? आप और मैं अपने आप से पूछें, क्या मेरे और आपके पास कोई उज़र मौजूद है किसी किस्म का कि जिसके बाद हम ये कह सकें कि हम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं ला सकते, क्या करें मजबूरी? चारों तरफ तो अल्लाह की नेमतें हैं, सर से पांव तक अल्लाह ताला की नेमतों के अंदर डूबे पड़े हैं, फिर भी अगर हम ये समझते हैं कि हमें ईमान नहीं लाना, तो इस जुमले को याद रखिएगा, हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हम पर पहुंचा है इस पर ईमान ना लाएं? हकीकत यह कि हमारे पास भी कोई उज़र नहीं है, जितनी नेमतें हमारे पास हैं, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रिफाकत में दाखिल कर देगा। ये है इतराफ़े हक। अब ज़रा सुनिए अल्लाह का मामला इनके साथ, इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कौल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और नेक लोगों का यही बदला है, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाते रहे वो लोग दोजख वाले हैं। ये है जी वो स्टोरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हबशा का एक वफद निजाशी का भेजा हुआ आया, तकरीबन 70 लोग थे उनमें, और हबशा चूँकि ख़ुद साहिबे फरासत था और वो पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुतासिर हो चुका था हज़रत जाफ़र की ज़ुबान से सूरत मरियम सुनने के बाद, तो लिहाजा उसने अपना एक वफद भेजा कि जाकर देख के आओ कि मक्का में जिस शख्स ने नबुवत का दावा किया है उसकी क्या हकीकत है। लिहाजा ये लोग आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो उनकी कैफियत हुई उसका तज़किरा इन आयात में है। मुशरिक थे लेकिन मुतकब्बिर नहीं थे, ये जुमला लिख लीजिएगा। जब बंदे के अंदर तकब्बुर नहीं होता तो वो छोटी बड़ी बात को सुनकर, चाहे बात छोटी हो चाहे बात बड़ी हो, वो अल्लाह ताला को मान जाता है, अल्लाह ताला की बात को मान जाता है। और जब दिल में हक आ जाता है ना, तो वो किसी भी फायदे या नुकसान के तसव्वुर से बेनियाज होकर इतराफ कर लेता है। बहुत सारे लोगों को हक समझ आया, या अब इस वक्त मौका नहीं है, जब आप डिटेल से सुने पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि जिनको हक समझ आ गया था नबी के दौर में भी, लेकिन ज़ाती फवायद को छोड़ने के खौफ से और इसी तरह से कुछ नफ़ों को पाने के शौक में उन्होंने नबी सल्लम को नहीं माना था। लेकिन जब बीच में कोई रुकावट ना हो और हक की पुकार आपके किसी नफे नुकसान के साथ ना जुड़ी हो तो लोग मान जाते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों को किसी अमल पे नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक बीमा कालू कालू एक कॉल की बुनियाद पे जन्नत अता कर दी। क्योंकि ये कॉल नहीं था, ये उनके अंदर के फटने की एक आवाज़ थी। मार्फते हक ने उनके सीने को फाड़ दिया, उनका दिल ऐसे पाश पाश हो गया उसके बाद कि उनको लगा कि शायद हम फट जाएंगे अगर हम बोलेंगे नहीं। हम हमेशा एक जुमला बोलते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, लेकिन आप इस रुकू में देख लीजिए, उन लोगों को अमल पे नहीं, सिर्फ बीमा कालू एक कॉल पे जन्नत मिल रही है। और एक ही कलेमा होता है इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी, जो उसको जन्नत के करीब और कभी जन्नत से दूर कर देता है। ज़रूरत है इस बात की कि हम सब अपने आप को इस चीज़ के साथ देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा कुरान पढ़े गए, कुरान खानियाँ हुई, हमने तहज्जुदों में पढ़े, तरावियों में सुने, लेकिन दिल नहीं बदला, क्योंकि अभी हमारे पास वो ईमान नहीं है, वो ईमान की मिठास नहीं है जो कि होने की ज़रूरत थी। तो आइए देखती है ज़रा कि हमारे ईमान का क्या लेवल है। इस रुकू में आपको दो आयात ईमान से मुतल्लिक दिखी। 83, तरा युनहुम तफीदु मिन दमी में क्या है जुमला? रब्बना मन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन। इस पे अपने लिए अमल का नुक्ता लिखिए। कुरान सुनकर आंखों में आंसू आना मार्फते हक की दलील है। और आयत 84 में हमारे लिए एक मैसेज है, जो अल्लाह को पहचान लेते हैं वो खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। इसका ताल्लुक आज की ईमान की शाख से भी है जो हम एंड पे पढ़ते हैं, पारे के एंड पे। तो लिखिए, इन लोगों का कुरान को सुनकर इनकी आंखों में आंसू आना, ये एक रब्बानी तजुर्बा था। याद रखिए कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक रूखा फीका नहीं, जज्बाती होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट। इसके बगैर कुरान दिल पे नहीं आता। आपने अल्लामा इकबाल के वालिद की नसीहत भी सुनी होगी कई बार, कि उन्होंने कहा था कि बेटा कुरान ऐसे पढ़ो कि जैसे ये तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। और मैं आप सबको भी कहूंगी कि ये मस्जिद, ये हॉल आप में से बहुत सारे उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा कुरान सुन रहे हैं, ये एक किस्म की गारे हिरा बन जाएगी कि जहाँ अल्लाह के नबी के दिल पे कुरान उतरा था। और आप इस हॉल को और इस मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा ईमान है। और वो जगह, वो इंसान हमारे लिए कह लीजिए नागुजीर हो जाते हैं, यानी उनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चलती, जिनके ज़रिए हमें पहली दफ़ा अल्लाह से मोहब्बत होती है। ये पहला कुरान पहला प्यार होता है, ये पहली मोहब्बत होती है। और जितना ज़्यादा आप इस मोहब्बत को अपने दिल पे महसूस करते हैं, आपका ताल्लुक बनता जाता है। ये जो बंदे और रब का ताल्लुक है ना, ये एक ज़िंदा ताल्लुक है। आपको अपने लैपटॉप से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन वो एक बेजान चीज़ है। ये कब तक रहनी है? जब तक वो आपको फ़ायदा देगा। अल्लाह ना करे वो फ़ायदा देना छोड़ दे, ख़त्म। आपके घर के कप, प्लेटें, कुर्सियाँ, मेज़, ये एक वक्ती मोहब्बत है आपसे। कल आपको उससे अच्छा घर मिल गया, आपको ये भूल जाएगा। आपको एक चीज़ से अच्छी चीज़ मिलती है, थोड़े दिन आपको याद रहे तो रहे, बड़ी बात है, बड़ी वफादार है, अदरवाइज आप उसको भूल जाते हैं। इसके बरक्स कुरान के साथ जब ताल्लुक बनता है ना, तो ये वो ताल्लुक है जो आपका अपने माँ बाप के साथ है। ज़रा से इस कोटेशन को ज़रा जस्ट करके देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप में से किसके वालदैन जिंदा हैं? अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत दे, आफियत दे। किसी का एक या दोनों जा चुके हैं? जी, मुझे बताइए, आपको उनसे मोहब्बत ख़त्म हो गई है ना, चले चुके हैं? आप कुछ दे ही नहीं सकते। अब्बा तो अब कुछ देने के काबिल नहीं रहे, दुनिया से चले गए। और जिनके दुनिया में, और बेचारे देने के लेवल पे नहीं, या वो लेने के लेवल पे, मोहब्बत खत्म हो गई है। ये है जिंदा ताल्लुक। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक एक जिंदा ताल्लुक है। लोग कहते हैं ना अल्लाह, इसलिए अल्लाह कि उसने मुझे पैदा किया है। गलत जुमला है, शिर्क है इसमें, निकाल के फेंकी है इसको। क्या मतलब अल्लाह अगर आपको पैदा ना करता तो वो अल्लाह नहीं था, वो मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं था। आप कहते हैं अल्लाह से मुझे इसलिए मोहब्बत है कि अल्लाह मुझे बहुत कुछ देता है। तो कुछ नहीं देगा तो छोड़ देंगे, डिप्रेशन में जाएंगे और सुसाइड कर लेंगे? नहीं, ये नफ्सियाती ताल्लुक है, ये नफ्सियात की सतह पे कायम होता है। और याद रखिए कि आपको मुझे अल्लाह सुबहाना तआला ने इस दुनिया में जो मौके दिए हैं ना, ये हमारे इम्तिहान है इरादे के। दुनिया में आपके ऊपर जो भी कोई इम्तिहान आता है, लनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जू की सूरत में, मसाइब खमसा क्यों ना आ जाए, और उसके बाद फिर अल्लाह आपको चेक कर रहा होता है कि आप इरादा क्या करते हैं। कुछ दुख बंदे को अल्लाह के करीब और कुछ दुख उसको अल्लाह से और दूर कर देते हैं। यही असूल खुशियों में, कुछ खुशियां बंदे को अल्लाह के इतना करीब कर देती हैं कि शुक्रगुजार बन जाता है, और कुछ खुशियां इंसान को इतना दूर कर देती हैं कि मुशरिक बनता है। आगे हम पढ़ने वाले सूरत अल अनाम में शाकिर मुशरिक बन जाता है, क्योंकि शुक्र शिर्क में डर जाता है। अब देखिए शीन रा काफ को डिफरेंट एंगल्स में देख लें, शीन रा काफ शिर्क, और शीन का काफ आगे कर दें, काफ आगे शुक्र, ये शुक्र और नाशुक्रियों की सारी कहानी है। तो लिहाजा आपका मेरा काम क्या है, इरादा करना, फिर अल्लाह ताला आपको उस इरादों में कामयाब करेगा और आपसे काम लेगा। अब इन असहाब का जो किस्सा था, इसमें बीमा कालू का लफ्ज आपको बताता है कि बंदे को सोच के बोलना चाहिए। एक कॉल आपका मेरा मुझे जन्नत के करीब और जन्नत से दूर, और मेरा और आपका एक कोई कॉल जहन्नम के करीब या जहन्नम से दूर कर सकता है। ये हदीस का खुलासा मैंने आपको बताया। वो कोई शिरकिया बात भी हो सकती है, वो किसी बंदे का दिल दुखाना भी हो सकता है, वो आपका अपनी बहू को ताना देना भी हो सकता है, वो आपका अपने मियाँ साहब को बड़ी अकड़ के साथ कोई गुस्से से जवाब देना भी हो सकता है, और वो आपका अपनी बेगम के ऊपर नाहक रोब डालते हुए गुस्से से कोई बेकार बात बोलना भी हो सकता है। इस जुबान की हिफाजत कीजिए। और आप याद रखिएगा कि जितना ज्यादा बंदे को अल्लाह सुबहाना तआला से मोहब्बत होती है ना, तो फिर वो अकेले नहीं जीता, अकेले नहीं खाता, वो अकेले ये मोहब्बत कर नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज है कि कंटेजियस है, अल्लाह की मोहब्बत कंटेजियस है। आप जिसके साथ बैठते हैं ना, आप उसको भी देते हैं। आप किसी को बहुत अच्छी नमाज पढ़ता देखे ना, तो एकदम आपका भी दिल करता है मैं भी अच्छी पढ़ूं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो बहुत रोजे रखे, तो आपको अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं ही को पेटू, मैं क्यों नहीं रोजा रखती, उठो रोजा रखो। तो ये जो बात है ना कि मार्फत इलाही का पायलट फ्लेम आपके दिल में लग जाए, तो आपकी जिंदगी का एक स्लोगन बनता है, जागो और जगाओ। शेयरिंग इज केयरिंग, सुनिए और सुनाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। आज की दुनिया ने इसको कैसे बदल दिया, जी और जीने दो, लिव एंड लेट टू लिव, ये इसका एक बदला हुआ फॉर्म है। ना ना ना, दीन की बात है भाई, दूसरों को भी जीने दो जी, सबका हाल है। रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, भाई रिलीजन पर्सनल होगा लेकिन मार्फत इलाही पर्सनल नहीं है। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की, हम फेथ इन एक्शन के पॉइंट इस रुकू से लें कि हिदायत पाने के लिए कुरान से जुड़ना है, अधूरे नहीं पूरे दिल से कुरान सुनना है, हक पहचान कर तासुब में पीछे नहीं हटना, कुरान का इल्म हासिल करना और आगे पहुंचाना है। अब जब आप ये सारी बातें सुनते हैं ना, तो आपका दिल चाहता है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करें, और जब आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत महसूस होती है ना, तो फिर आपका दिल करता है कि आप उसकी बातें करें, आप उसकी बातें सुनें, और उस अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को कितना आगे ले जाएं, किस तरीके से ले जाएं, इसको अगर आपने महसूस करना है ना, तो आप ज़रा सा सोचिए अपने ऊपर लेकर कि क्या मैं अपने रब की बातों को सुनते वक्त उसके साथ अपने ताल्लुक को महसूस करती हूँ। और आप महसूस करके देखेंगे कि जितना ज्यादा आप अपने अल्लाह ताला की बातें सुनते जाएंगे, आपको मजा आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि मैं अपने रब की और रब भी मेरा। फिर वो ताल्लुक पैदा हो जाता है कि जिसके बाद नमाज मजे की हो जाती है, फिर वो ताल्लुक पैदा हो जाता है कि जिसके बाद इंसान कहता है कि अल्लाह मेरा कौन सा गुनाह है कि जो तूने मुझे नमाज से दूर कर दिया, वो फिर ये नहीं कहता अच्छा कजा पढ़नी है कि नहीं, अच्छा इकट्ठी कर लूं, अच्छा ना ही पढ़ूं, अच्छा क्या है, वो बाद की बातें हैं। उस बंदे को अपने रब के साथ वो एहसास पैदा होता है जिसको आप ये कह सकते हैं कि, मैं आपको एक मिसाल देके आगे ले जाती हूँ। आप देखिए कि आप और मैं बाहर के मुल्क में है ना इस वक्त भी, तो ज़रा बैक होम हम में से कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से, और कुछ हमारी प्यारी सी बहनें बांग्लादेश से भी हो सकती हैं। एयरपोर्ट का मंजर जहन में लाइए। अक्सर एयरपोर्ट्स पे लोगों की आंखें गीली होती हैं, क्योंकि या आप किसी को छोड़ने जाते हैं या कोई आपको छोड़ रहा होता है। लिखिए एक जुमला, एयरपोर्ट पे अपने किसी प्यारे को कई साल के बाद देखने के वक्त जो दिल की कैफियत होती है ना, बंदे मोमिन की वो कैफियत कुरान की आयतों को सुन के होती है, मिम्मा रफू मिनल हक, रो पड़ता है। आज से आपने जब भी कुरान पढ़ना है, थोड़ा पढ़े ज्यादा पढ़े आपका नसीब है, अल्लाह आपको और मुझे भी बहुत सारी तौफीक दे, लेकिन आपने मिम्मा अरफू मिनल हक के जुमले के साथ पढ़ना है। आप देखेंगे कि आपकी जुबान से एतराफ हो ना हो, आपका दिल गवाही देगा, ये थी वो किताब जिसकी मुझे जरूरत थी। कोई कहता मुझे इस कुरान को पढ़ने से डर लगता है, मैं इसकी कमिटमेंट नहीं कर सकती, नहीं पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका रब आपको क्या कहता है? तुम चलो, मैं गिरने नहीं दूंगा, तुम गिरने लगोगे मैं तुम्हें थाम लूंगा। कई साथियों की गवाहियां मौजूद हैं कि कुरान पढ़ने के बाद जिंदगी में ऐसे ऐसे हचकोले आए, ऐसे ऐसे मुश्किल हालात से हम गुजरे कि अगर हाथ में कुरान ना होता तो गिर जाते। तो ये किताब आपको थाम लेती है, और आप इस किताब को जब पकड़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको किसी की परवाह नहीं रहती। अल्लाह करे कि मैं और आप इस दर्जे पे आज इस हक को पा जाएं कि हमें इससे वो उनसियत और मोहब्बत महसूस हो जाए जो हमें अपने प्यारों के साथ होती है। आगे चलते हैं, रुकू नंबर 12, 87 to 93। टॉपिक है हलाल को हराम नहीं करना, यानी जब अल्लाह की मार्फत हो जाती है ना, जब आपको अल्लाह ताला की बात समझ आने लग जाती है ना, तो फिर आप हलाल और हराम अपने हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह का समझते हैं। और आयत दोबारा शुरू हो गई, आपकी प्यार भरी कॉल आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा हल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुतदीन। क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से आगे निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं इनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ और अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों में लफ कसम पर तुम्हारी पकड़ यानी मुआखजा नहीं फरमाता, लेकिन पकड़ तो या मुआखजा उस पर फरमाता है तुम जिन कस्मों को मजबूत कर दो। इसका कफारा 10 मोहताजों को खाना देना है, औसत दर्जे का यानी एवरेज पे, जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना है, या एक गुलाम या लॉन्डी को आज़ाद करना है, और जिसको इसकी कुदरत ना हो यानी अफोर्ड ना कर सके, तो 3 दिन रोजे हैं। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जबकि तुम कसम खा लो और अपनी कस्मों का ख्याल रखो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। कसम का कफारा आ गया। कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि कसम का कफारा कुरान में कहाँ है, तो फौरन इस आयत को याद कर लें। ये छोटे छोटे रिमाइंडर ना अलग से लिख लिया करें, इससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ेगा। दोबारा पुकार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसके भी साथ एक नोट लिखना चाहे तो लिख लें, शराब की हुरमत का कतई हुक्म। तीसरा मौका है ये जिसमें शराब की हुरमत की बात है, उसी में से ये बात है। ऐ ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और पानसे के तीर ये सब गंदी बातें हैं, शैतानी अमल हैं, इनसे बिल्कुल अलग थलग रहो ताकि तुम फलाह पा सको। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुगस वाक़े कर दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुम्हें बाज रखे, बस तुम भी अब बाज आ जाओ। नोट कर रहे हैं आप कितनी बाजें आयत है? क्या कुछ कह दिया गया, इसके बावजूद कुछ लोगों के दिल मानने को तैयार ही नहीं कि शराब हराम है। कई गैर मुस्लिमों ने इस बात की दलील दी कि इस्लाम कबूल करने के बाद हमारा बजट बड़ा अच्छा सेट हो गया, क्योंकि हमारे पास से गैमलिंग और लीकर ख़त्म हो गया। आज भी मेरा लिए सबसे महंगा मशरूब शराब का ही है। कई एयरलाइंस हैं कि वो ड्रिंक्स फ्री देती हैं, लेकिन शराब पैसों की देती हैं। और हमारे लिए इन सारी बातों को छोड़ने काफ़ी हैं। अल्लाह के नबी की वो हदीस जो यहाँ कोट नहीं है लेकिन आपने सुनी तो होगी, कि एक शराब की वजह से 10 चीज़ों पे लानत है, बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, पिलाने वाले, उसको ढो के एक जगह से दूसरी जगह लाने वाले, खुद शराब पे लानत है। जिस रिस्क में शराब होगी, याद रखिए उस रिस्क में बरकत नहीं होगी, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह हमारे उन सारे मुसलमान भाई बहनों को जो कन्वीनियंट स्टोर्स में फंसे हुए हैं, या फिर अपने होटल्स या अपनी किसी और ऐसी सर्विस में ऐसी कोई चीज़ पेश करते हैं, उनको उसे निकाल दें। इसके लिए ईमान की ताकत चाहिए। लिखे, हराम काम को छोड़कर हलाल की तरफ आने में जिस ताकत, जिस कुव्वत की ज़रूरत है, वो ईमान की कुव्वत है। कुछ लोगों को मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा से जानती हूँ, आज तक वो कन्वीनियंट स्टोर की शराब से नहीं निकल सके, क्योंकि उनका ख्याल है ज़रा से हालात अच्छे हो जाएंगे ना, फिर हम छोड़ देंगे। और कई ढकोसले भी शैतान ने दिए हुए हैं, हम इस कमाई को अलग रखते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अगर मैं अमेरिका में बैठ के ये बात ना कर रही होती तो मैं ये बात ना करती, और मेरा ख्याल है पिछले कई साल में मैंने ये बात नहीं की होगी, क्योंकि मैं अमेरिका में नहीं थी। ये यहाँ का घर घर का मसला है। मोस्टली कन्वीनियंस स्टोर आर ओन्ड बाय मुस्लिम्स। अल्लाह ताला हमारे उन भाई बहनों को ईमान की कुव्वत दे कि वो इससे अपने आप को निकाल सकें। करो क्या, और तुम अल्लाह की इताअत करते रहो, रसूल की इताअत करते रहो, और एहतियात रखो। अगर एराज करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के जिम्मे साफ साफ पहुंचा देना है। ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हो और नेक काम करते हो, इस चीज में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खा पी चुके हों, जबकि वो लोग तकवा रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेजकारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर परहेजकारी करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। यायत 93 को सुनकर आपको कुछ महसूस हुआ? नया नया गुनाह छोड़ना इस आयत के मुताबिक होता है। बंदा करता है, फिर छोड़ता है, फिर हो जाता है, फिर छोड़ता है, फिर कई। और मैं इंजॉय करती हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो पहली दफ़ा कुरान सुनने के बाद अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, पक्का वादा करते हैं, अब मैंने ये नहीं करना, गिबत नहीं करनी, मैंने ये चीज़ नहीं देखनी, मैंने ये नहीं पहनना, फिर किसी न किसी की बात में आके कर लेते हैं, फिर तौबा करते हैं। तो बड़ा नेचुरल वे है ये। अल्लाह ने शराब की हुरमत के दरमियान में इसको लाकर बता दिया कि जैसे शराब का नशा होता है ना, ऐसे गिबतों का भी नशा होता है, ऐसे फोहश का भी नशा होता है, ऐसे फखाशी का भी होता है। तो कभी नजर बहक जाए, कभी कान में कोई गलत चीज पड़ जाए, कभी आंख कुछ देख जाए, तो फौरन तौबा कीजिए, अल्लाह आपको बचाएगा। और इसके लिए जरूरत है आपको ईमान की गोलियां खाने की। मिल रही हैं आज के पारे में तो बड़ी 1000 mg की गोलियां ईमान की। जो लोग गोलियां बहुत खाते हैं उनको पता है कि mg क्या होते हैं, भारी डोज है आज के पारे में, बिलीव मी। और मीठी मीठी गोलियां ये भी बता दूं, अब आरा 9 और 10 में कड़वी गोलियां भी आने वाली हैं, कई इंजेक्शन भी लगेंगे और कहीं ना कहीं जाके ऑपरेट भी कराना पड़ेगा जाके। अभी आप सिर्फ मीठी गोलियां लीजिए, मोहब्बत ही मोहब्बत है।